21 अगस्त दिन रविवार, नमस्कार भारत, फैसल मोहम्मद अली से। पश्चिमी एशियाई देश यमन में सऊदी अरब के हमलों के खिलाफ लाखों लोगों का प्रदर्शन। रैली के वक्त ही सऊदी लड़ाकू विमानों ने गिराए वहां बम, सुनवाएंगे एक रिपोर्ट। इस्लामिक देशों के समूह OIC ने कहा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं। और ओलंपिक में आज पहलवान योगेश्वर दत्त का मुकाबला, कैसी है तैयारी?
मेरे पिताजी का ही सपना था और मैंने पहली बार लिएंडर पेस को देखा था जब उसका ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल आया था। तब से सोच गया मैं भी ओलंपिक में मेडल जीतना है और पिछले 2012 में मैंने मेडल जीता, वो भगवान ने मेरा सपना पूरा किया।
होगी अखबारों की समीक्षा भी, सब आगे, लेकिन पहले BBC समाचार।
BBC समाचार वात्सल्य राय से। यमन की राजधानी सना में हजारों लोगों ने सऊदी गठबंधन सेना के हमलों के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हूती विद्रोहियों की ओर से घोषित नई गवर्निंग काउंसिल के प्रति भी समर्थन जाहिर किया। सना पर बीते एक साल से हूती विद्रोहियों का नियंत्रण है। सऊदी गठबंधन सेना ने मार्च 2015 से हूती विद्रोहियों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। रिपोर्टों के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान भी सऊदी विमानों ने बम बरसाए। तुर्की के सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक गाजियान टेप में हुए बम धमाके में 22 लोगों की मौत हो गई और 90 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। हमला एक विवाह समारोह में हुआ। गाजियान टेप के गवर्नर ने इसे चरमपंथी हमला बताया है। तुर्की के उप प्रधानमंत्री मेहमेत सिमसेक का कहना है कि ये आत्मघाती हमला प्रतीत होता है। एक अन्य मंत्री ने कहा कि ऐसी आशंका है कि ये हमला इस्लामिक स्टेट ने किया है। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने कहा है कि सरकारी सेना ने कुंदूज प्रांत के एक अहम ज़िले को अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे से छुड़ा लिया है। इसके पहले सरकारी सेना को कुंदूज की राजधानी से पीछे हटना पड़ा था। विद्रोहियों ने खानाबाद ज़िले पर कब्जा कर लिया था, मंत्रालय के प्रवक्ता सादिक सादकी ने बताया। खानाबाद जिले पर नियंत्रण हासिल करने के लिए सैन्य अभियान शुरू किया गया। हमारी सेनाएं जिले के केंद्र में दाखिल हो गईं। जिले का पुलिस मुख्यालय हमारे नियंत्रण में है। अभियान अभी जारी है। अभी जिला पूरी तरीके से खाली नहीं कराया जा सका है, इसमें कुछ और वक्त लगेगा। ये थे सादिक सादगी के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। सीरिया के एलेपो में मौजूद मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि हवाई हमलों में घायल ओमरान दकनीश के बड़े भाई की मौत हो गई है। एक एम्बुलेंस में बैठे ओमरान की हाल में सामने आई एक तस्वीर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीरिया के गृह संघर्ष को लेकर चिंता जाहिर की गई थी। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि इस महीने एलेपो और आसपास के इलाकों में करीब 50 बच्चों की मौत हो चुकी है। रियो ओलंपिक में मेजबान ब्राज़ील की फुटबॉल टीम ने जर्मनी को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ, जिसमें ब्राज़ील ने 5-4 से मुकाबला अपने नाम किया। तय वक्त तक फैसला न होने पर मैच एक्स्ट्रा टाइम तक खिंचा। एक्स्ट्रा टाइम खत्म होने के वक्त दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर थीं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रमुख थॉमस बाक ने कहा है कि रियो ओलंपिक ने साबित किया है कि जिन देशों के पास कम पैसा है वो भी कामयाबी के साथ ओलंपिक का आयोजन कर सकते हैं। BBC समाचार।
BBC रेडियो सुनने वालों का रविवार की इस सुबह स्वागत है, फैसल मोहम्मद अली और पूरी टीम की तरफ से। पश्चिमी एशिया के मुल्क यमन में लाखों लोगों ने राजधानी सना में जमा होकर, माफ कीजिएगा, सऊदी अरब के खिलाफ और विद्रोहियों की सरकार के समर्थन में रैली की। सऊदी अरब पिछले साल से वहां लगातार हवाई हमले करता रहा है, उसे अमरीका और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का समर्थन हासिल है। ये लोग पुरानी सरकार का समर्थन करते हैं। मुल्क में जारी हमलों की वजह से संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक 6,500 लोगों की मौत हो चुकी है और तकरीबन 20 लाख लोग बेघर हो गए हैं। BBC संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुने वात्सल्य राय से।
हाथों में बैनर थामे, झंडे पकड़े हजारों की संख्या में लोग यमन की राजधानी सना की सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारी सऊदी गठबंधन सेना के हवाई हमलों के खिलाफ नारे लगा रहे थे। वो हूती विद्रोहियों की ओर से जारी नई गवर्निंग काउंसिल के पक्ष में भी आवाज बुलंद कर रहे थे। बीते साल से सना पर काबिज हूती विद्रोहियों के मीडिया मामले के उपमंत्री हशीम शराफ अल्दीन ने कहा कि इस प्रदर्शन ने पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा, लोगों ने आज के प्रदर्शन से दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने दुनिया को बताया कि हमलों के 1.5 साल बाद भी वो एक साथ खड़े होने की ताकत रखते हैं और राजनेताओं के कदमों का समर्थन करते हैं। ये थे हशीम शराफ अल्दीन के शब्द। सऊदी अरब की अगुवाई वाले गठबंधन का समर्थन यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता रखने वाली राष्ट्रपति अब्द राबू मंसूर हादी की सरकार के साथ है। हूती विद्रोहियों को बाहर करने के लिए सऊदी अरब की अगुवाई वाली गठबंधन सेना मार्च 2015 से यमन में हवाई हमले कर रही है। इन हमलों के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल एक व्यक्ति ने कहा कि यमन के लोग देश की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। हम आज नई काउंसिल का समर्थन करने आए हैं। हम संसद का समर्थन करते हैं और हादी से कहते हैं कि उनकी कोई वैधता नहीं है। इकलौती वैधता लोगों की राय के जरिए सामने आ सकती है और लोग अपना फैसला खुद लेंगे। ये थे प्रदर्शन में शामिल एक व्यक्ति के शब्द। सना से मिली रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान भी सऊदी गठबंधन सेनाओं ने पास के इलाके में बम गिराए। सना में मौजूद राजनीतिक विश्लेषक हिशाम अल ओमेशी ने बताया,
There's almost 100,000 people near the demonstration area. The crowd wanted to show public support to the government against the Saudis.
प्रदर्शन की जगह करीब 1,00,000 लोग मौजूद थे। वहां मौजूद लोग सऊदी अरब को दिखाना चाहते थे कि सरकार के पास कितना समर्थन है। जल्दी ही सऊदी विमान हमारे ऊपर चक्कर लगाने लगे। हमें लगा कि हमेशा की तरह ये विमान यूं ही गुजर जाएंगे, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने बम बरसाना शुरू कर दिया और लोग भागने लगे। वहाँ हर कोई हथियार से लैस था। उन्होंने अपनी AK-47 से हवा में गोलियां चलानी शुरू कर दी, हालांकि उससे विमानों का कुछ नहीं बिगड़ना था। ये थे हिशाम अल ओमेशी के शब्द। सऊदी सेना के हवाई हमलों से यमन में 2,000,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। हमलों के दौरान आम लोगों की मौत को लेकर सऊदी सेना की लगातार आलोचना होती रही है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इन हमलों में करीब 6,500 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में से ज्यादातर आम लोग थे। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि यमन के 80% लोगों को मानवीय सहायता की जरूरत है।
यमन में विशाल रैली, रिपोर्ट सुना रहे थे वात्सल्य राय।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
और अब रुख करते हैं भारत का। भारत प्रशासित कश्मीर में जारी स्थिति पर कल सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत 20 नेताओं ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से दिल्ली में मुलाकात की और आग्रह किया कि वो केंद्र को कश्मीर संकट का राजनीतिक हल ढूंढने की सलाह दें। इस बीच राज्य में कर्फ्यू जारी है। एक रिपोर्ट के साथ दिल्ली से सुशीला सिंह।
भारत प्रशासित कश्मीर के कई इलाकों में कर्फ्यू जारी है, लेकिन पोस्ट पेड मोबाइल सेवा शुरू कर दी गई है। इधर कश्मीर के मौजूदा हालात पर कल विपक्षी पार्टी के नेता उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में 20 नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। लगभग एक घंटे चली इस बैठक के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा,
इट इज ए पॉलिटिकल प्रॉब्लम, इट कैन नॉट बी हैंडल्ड एडमिनिस्ट्रेटिवली, इट कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय क्रिएटिंग अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस।
हमने राष्ट्रपति से अपील की है कि वो केंद्र सरकार से एक विश्वसनीय और अर्थपूर्ण राजनीतिक बातचीत की प्रक्रिया शुरू करने को कहें। ये एक राजनीतिक समस्या है और इसे प्रशासनिक स्तर पर हल नहीं किया जा सकता। इस समस्या को मानवीय संकट बताकर इसका समाधान नहीं निकाला जा सकता। इस प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए। राज्य के राजनीतिक मुद्दे के समाधान के लिए कश्मीर मसले से जुड़े सभी पक्षों को बातचीत में शामिल किया जाना चाहिए।
उमर अब्दुल्ला के इस 20 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस राज्य इकाई के प्रमुख GA मीर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक MY तारेगामी और निर्दलीय विधायक हकीम यासीन शामिल थे। अब्दुल्ला ने खेद जताते हुए कहा कि जो कदम राज्य सरकार और केंद्र सरकार को उठाने चाहिए थे, वे विपक्ष को उठाने पड़ रहे हैं। राज्य में PDP के नेता वहीदुर रहमान पारा ने सवाल उठाया,
टुडे एट न्यू दिल्ली बाय मेकिंग सच इररिलेवेंट स्टेटमेंट ही हैज ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू अपीज पाकिस्तान।
राजधानी दिल्ली में इस तरह के अप्रासंगिक बयान देकर उन्होंने पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के अलगाववादी संस्थाओं के तुष्टिकरण की कोशिश की है। वे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों और अन्य अलगाववादी संस्थाओं और पाकिस्तान के प्रवक्ता बन गए हैं। उन्हें इस तरह के गंभीर मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।
इससे पहले राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पहले ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान लोगों के दिल जीतने की कोशिशों को दोहराने की बात कर चुकी हैं। विपक्ष के दबाव के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान भी दिया था। सरकार इस मसले पे सर्वदलीय बैठक भी बुला चुकी है, जिसमें सभी पार्टियों ने एक मत से माना था कि भारत विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुशीला सिंह, BBC, दिल्ली।
इधर इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉपरेशन ने कहा है कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं है। वात्सल्य, जहां तक मुझे याद आता है, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस मामले में कोई ट्वीट भी किया है।
जी फैसल साहब, पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं नफीस जकारिया। दरअसल उन्होंने ट्वीट किया है और OIC के जो जनरल सेक्रेटरी समय पाकिस्तान के दौरे पर हैं जनरल आयाद अमीन मदनी, उनको कोट करते हुए ये ट्वीट किया है और ये बताया है कि कश्मीर इंडिया का अंदरूनी मामला नहीं है। और ये भी आगे लिखते हैं कि बल्कि मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन का अंतर्राष्ट्रीय मामला है। ये लगभग वही लाइन है जो पाकिस्तान पिछले दिनों जिस पर बात करता रहा है। इस्लामाबाद में आयाद अमीन ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ उनके हवाले से बताया गया है कि उन्होंने कहा कि कश्मीर के शहरियों को खुद फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने इसकी हिमायत की और ये भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र का जो प्रस्ताव है जम्मू कश्मीर को लेकर, उसके मुताबिक इसका हल किया जाना चाहिए। और मदनी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इस्लामाबाद में, तो उनके साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं सरताज अजीज
विदेश मामलों पर,
जी वो भी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने बाद में एक बयान भी जारी किया और उन्होंने बयान में बताया कि भारत प्रशासित कश्मीर में मौजूदा हालात पर चर्चा की गई मदनी के साथ। और ये भी बताया कि आने वाले वक्त में सितंबर में कश्मीर ग्रुप न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की बैठक के दौरान इस मामले को उठाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए वात्सल्य। और अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां बाढ़ का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में भारी बारिश के कारण 16 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज़्यादा प्रभावित रीवा और सतना ज़िले हैं, जहां कम से कम 100 से अधिक गांव पानी में डूबे हुए हैं। पूरी जानकारी के साथ शुरेह नियाजी।
प्रदेश के रीवा, सतना, छतरपुर, पन्ना, दमोह और टीकमगढ़ में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। रीवा और सतना में राहत कार्य के लिए सेना को बुला लिया गया है। सेना मोटर बोट और हेलीकॉप्टर के जरिए फंसे हुए लोगों को निकालने के काम में जुटी हुई है। लगभग 6,000 प्रभावित लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, वहीं हजारों लोग अब भी फंसे हुए बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आपात बैठक ली और उसके बाद वो रेल के जरिए सतना पहुंचे,
जहां बहुत आवश्यकता थी वहां NDRF की टीमें भी रीवा सतना में हमने बुलाई है, रीवा सतना पन्ना में, लेकिन SDRF की टीम हमारी पूरे प्रदेश में 12 लगी हुई है। अतिवृष्टि के कारण बाढ़ से रीवा जिले के 35 गांव, सतना जिले के ज्यादा प्रभावित गांव 5 हैं, में से 62 गांव प्रभावित हैं। पन्ना जिले के लगभग 41 गांव बाढ़ के कारण पानी से घिरे हुए हैं। सेना को भी बुलाया गया है।
मैहर में एक 3 मंजिला बिल्डिंग के गिर जाने से 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं सागर जिले में 7 लोगों की मौत एक इमारत के गिर जाने से हुई है। भारी बारिश की वजह से हालात कई जिलों में खराब हैं। वहीं राजधानी भोपाल में भी 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों का संपर्क टूट गया है। बारिश की वजह से ज्यादातर नदियां और नाले उफान पर हैं, लेकिन प्रभावित इलाकों में लोगों का कहना है कि राहत ना के बराबर मिल रही है।
पानी हम लोग अंदर के घर से बच्चों को निकलवाए हैं, जैसे पानी इतनी तेज बढ़ रहा था कि हर 5 मिनट में 1-1 फुट से ऊपर पानी जा रहा था। शाम के कोई प्रशासन नहीं आया, शाम से लेके अभी सवेरे जो भी लोग आए हो तो आए हो।
वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अगले 2 दिनों में भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी मध्य प्रदेश से अब कम दबाव का क्षेत्र पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ जा रहा है और उस इलाके में भारी बारिश हो सकती है। शुरह नियाजी, BBC न्यूज, भोपाल।
बाढ़ के हालात देश के दूसरे राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में भी खराब हैं। वात्सल्य राय ने बात की NDRF के कमांडेंट आलोक कुमार सिंह से।
उत्तर प्रदेश का जहाँ तक प्रश्न है, चित्रकूट में जहाँ पे हमने अब तक 451 लोगों को बचाया है, इसके अलावा महोबा में वहाँ पे एक बहुत बड़ी डैम ब्रिज की खतरा है और उससे तकरीबन 1,000 लोगों के प्रभावित होने का अंदेशा है। वहाँ पे टीम जो है रेडी हालत में है। बांदा के अंदर फ्लड से करीबन 15 से 20 गांव अफेक्टेड हुए हैं। गाजीपुर के DM साहब, उन्होंने भी अभी हमसे संपर्क साधा है और हमारी टीम रात को निकलकर सुबह वहां पर 2 टीमें ऑपरेशन करेंगी। बलिया में भी हमारी एक टीम वहां पे ऑपरेशन कर रही है दोपहर से, और वाराणसी में नगवा और सामने घाट के बीच का इलाका जो है वहां पे 7 जो मोहल्ले हैं बड़े बड़े, इनमें तकरीबन 3,000 लोग फंसे हुए हैं। पहले ऐसी खबरें नहीं है कि जब लोगों ने बाढ़ आने पर अपने मकान खाली कर दिए तो वहां काफी चोरियां हुई हैं। इसके कारण हमें लोगों को काफी परसुएड करना पड़ा है कि आप मकानों को खाली करें। और SSP जो यहाँ पे, से मैंने 2 रिक्वेस्ट की है कि एक तो इन इलाकों में प्राइवेट बोट न जाए और साथ में पुलिस की गश्त हो। जनरली वाराणसी स्पेसिफिक कहानी नहीं है, ये हर जिले की यही कहानी है। हमें रेस्क्यू ऑपरेशन की नौबत ही ना आए, अगर जिला प्रशासन के अनुरोध पर लोग टाइम पे शिफ्ट हो जाएं।
मध्य प्रदेश में कितनी जनसंख्या प्रभावित है और कितने जिले प्रभावित हैं, वहां आपकी कितनी टीमें तैनात हैं?
मध्य प्रदेश में स्थिति ज्यादा भयावह है क्योंकि वहां पर जगह जगह रिजर्वायर हैं और जगह जगह डैम्स हैं। वहां नर्मदा का जो पानी है ये दोनों तरफ से प्रभावित हुआ है, गंडक से भी प्रभावित हुआ है। रीवा में अर्बन फ्लड ज्यादा है, टीमें ऑपरेट कर रही हैं, उनसे रेस्क्यू कम हुआ है, रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा हुआ। लेकिन जो फोरकास्ट है हमारे पास कि 2 दिन बाद वहां पर फिर भारी बारिश के बाद जो आउटर रीवा का जो इलाहाबाद बॉर्डरिंग है उस इलाके में फ्लड की संभावनाएं बढ़ेंगी। सतना जो है ये काफी ज्यादा प्रभावित है, वहां पे हमारी टीमें हैं लोकल। इसके अलावा पन्ना में हमारी टीम वहां पे ऑपरेट कर रही है और विदिशा में, क्योंकि फोरकास्ट के मुताबिक वहां भोपाल का जो सेंट्रल इलाका है वहां बारिश का काफी अंदेशा है। तो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में मिलाकर करीबन 20,000 से 25,000 लोग प्रभावित हुए।
आपने टोटल कितनी टीमें लगाई हुई हैं?
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश टोटल हमारी अभी तक 14 टीम काम कर रही है।
आज ही ओलंपिक के आखिरी दिन भारत के पहलवान योगेश्वर दत्त 65 किलोग्राम भार वर्ग में अपना दावा पेश करेंगे। सीधे चलते हैं नॉरिस प्रीतम के पास रियो। नॉरिस स्वागत है कार्यक्रम में। कितने बजे मैच है योगेश्वर दत्त का और कौन है जिनसे उनका दो दो हाथ होगा?
देखिए योगेश्वर का मैच जो है सबसे पहले है सवेरे 8:30 बजे करीब होगा यहाँ लोकल टाइम से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कि ब्राजील और जर्मनी का जो फुटबॉल मैच था उसकी बहुत हलचल थी और पहली बार ओलंपिक में ब्राजील फुटबॉल में जीता, हालांकि वर्ल्ड कप जीतता रहा है। पूरी सड़कों पर इतनी चहल पहल है, पूरे ब्राजील निवासी बाहर निकले हुए रियो निवासी, तो इससे बहुत एक जश्न मन रहा है। ये तो हर बात ब्राजील आपने भारत से सवाल है अपने योगेश्वर, उनकी कल सवेरे है और आज सवेरे मेरी उनके कोच मलिक साहब से बात हुई और मुझसे मलिक का कहना था कि वो बहुत फॉर्म में है और वो निश्चय ही साक्षी के ब्रॉन्ज मेडल के बाद योगेश्वर गोल्ड जीतेंगे। सुनिए क्या कहना था उनका।
योगेश बड़ा हौसले में है लड़का, बहुत अच्छे तरीके से फिट है और अभी रूम पे आराम कर रहा है। सुबह उसकी बाउट है 8:30 बजे और आप लोग सब दुआएं कीजिए, भगवान से प्रार्थना करिए वो लड़का मेडल लेके आए। योगेश के तो हमने नेचुरल गोल्ड के ही उम्मीद करेंगे उससे, तो हम नहीं वो सब ठीक है। हाँ ठीक है, वो इस बात की कोई टेंशन नहीं मानता, बड़ा योद्धा है वो।
बस अब यही है, इंतजार है सबको कि मलिक साहब की जो भविष्यवाणी है वो सच हो और भारतीय दल खाली एक ब्रॉन्ज और उसके साथ नहीं बल्कि गोल्ड मेडल भी वापस लेके जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता योगेश्वर दत्त के रियो जाने से पहले हमारे साथी रेहान फजल ने उनके ट्रेनिंग कैंप में उनसे मुलाकात की। अपनी तैयारियों के बारे में बात करते हुए योगेश्वर दत्त ने कहा,
देखिए मैं बता दूं कि 2012 में जब मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया ओलंपिक में, तब से मैंने सोचा था कि नहीं गोल्ड चाहिए ओलंपिक में और तब से मेरा पूरा फोकस ये है कि देश के लिए गोल्ड जीतना है। बीच में इंजरी भी हुई 2013 भी, मैं पूरा साल नहीं इंजरी की वजह से कहीं कॉम्पिटिशन नहीं खेल पाया, पूरा साल इंजरी नहीं रही। उसके बाद फिर अभी 2015 में 3 ऑपरेशन हुए मेरे नी के, और मेरा अपने प्रैक्टिस में कभी हुआ नहीं कि मैं अगर मैच पे नहीं करता तो जिम वगैरह जो अभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वो करता रहता था। अभी भी ये है कि हम सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, हमारा जो क्लास लगती है वो 8 बजे लगती है, 8 से हमें 11 बजे तक ट्रेनिंग करते हैं, 3 घंटा सुबह होती है और 3 घंटे शाम होती है, और हमारा पूरा फोकस रहता है कुश्ती पे, अपनी ट्रेनिंग पे। हमारी 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को ट्रेनिंग होती है।
और ट्रेनिंग पे ज्यादा जोर टैक्टिस पे होता है या अभ्यास पे? इस लेवल पे क्या आपको कुछ सीखने की जरूरत होती?
मैं मानता हूँ कि कभी भी 100% पूरा वो नहीं होता, इसलिए हम सीखते रहते हैं जो कमी होती है, क्योंकि कॉम्पिटिशन में कमियां होती रहती हैं। अब पहले भी खेल रहे हैं कि जो कमियां हमें उसको उन पे वो सुधार करें, हमारा वीक पॉइंट क्या है और जो हमारा मजबूत पॉइंट और मजबूत करें, क्योंकि तभी पहलवान पता कर लेते हैं कौन पहलवान क्या टैकिंग लगाता, उसमें थोड़ी चेंजिंग भी करनी पड़ती है। जितना अनुभव आज मेरे को आई उतना 4 साल या 8 साल पहले, पहला ओलंपिक 2004 में तब नहीं था, पर आज अनुभव, पर अभी अनुभव और ज्यादा चाहिए क्योंकि इतने ओलंपिक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन होता है और सबका सपना होता है ओलंपिक चैंपियन बनने का।
पहले आप 60 किलोग्राम वर्ग में लड़ा करते थे, इस बार आप 65 में हैं, कुछ फर्क पड़ा है, कुछ लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन कुछ ज्यादा बढ़ा है?
2004 ओलंपिक पहला ओलंपिक 55 kg में खेला था, उसके बाद 2008 और 2012 का मैं 60 kg में खेला। बस ये है कि मेरा अभी जैसे 65 में हूँ मैं, थोड़ा पावर बढ़ानी पड़ती है, नए वजन में आते तो नए पहलवान मिलते हैं, नया कॉम्पिटिशन होता है और हम ऊपर वेट में जाएंगे तो हमें ताकत की जरूरत भी पड़ेगी। कॉम्पिटिशन तो बढ़ा पर मेरे लिए मेरा ये मतलब 65 बहुत अच्छा है। मैंने अभी तक 5 कॉम्पिटिशन खेले हैं, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और 2 इटली टूर्नामेंट से अभी क्वालिफाई राउंड खेला है और 5 में गोल्ड जीता, इसलिए मेरे लिए वेट बहुत अच्छा है।
तो रियो में आपका मुकाबला किन लोगों से होगा, टॉप पहलवान कौन कौन से हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि आप उनसे भिड़ेंगे?
सभी अच्छे हैं, ये नहीं बोल सकते कि कोई कमजोर है, बस ये है कि मैं हमारा जो ज्यादा अभी जो इस साल 2015 में जो वर्ल्ड चैंपियन बना इटली का पहलवान, रशिया है, ईरान है, जापान है, उज्बेकिस्तान है, मतलब काफी पहलवान है, बस ये है कि हमें वो दिन अपना बनाना है, जिस दिन हमारी कोशिश होगी दिन हमारा हो।
इटली का जो पहलवान है वो विश्व चैंपियन है, आपने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह देखी होंगी, क्या आपको लगता है कि क्या चीजें उसमें अच्छी हैं?
रशियन पहलवान की, ईरानी पहलवान, सबकी मैंने वीडियो देखी, कुश्ती भी देखी है, क्योंकि मैं जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी यूएसए वहां पे मैं उस टाइम पे था, वो थोड़ा डिफेंस ही है, थोड़ा लैग होगा, डिफेंस उसका अच्छा है, बस ये है कि हम वहां से, ये है कि हम अगर जहां भी अटैक लगाए पक्का लगाए, जो भी हम टेक्निक अप्लाई करें वो पूरी फुल जाए तभी हमें जीत मिलेगी और उस पे हम अपना जो हमारा काम है उस पे वो ही कर रहे हैं।
तो अभी आपको भारतीय कोच ट्रेन कर रहे हैं या विदेशी कोच भी कर रहे हैं?
देखिए हमारा जो कैंप लगाया हुआ है उसमें विदेशी पहलवान जॉर्जियन है हमारे साथ, 2003 से हमारे साथ लगा हुआ है, उससे अलग हमारे चीफ कोच जगमंदर पहलवान जी हैं और पूरी टीम है हमारे, यहाँ भी कैंप में 6-7 कोच हैं और सभी ये इसी पे पूरा फोकस है कि अच्छी तैयारी हो।
आपको याद किया जाता है जब ओलंपिक्स में आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जो दांव आपने लगाया था, कोरियन पहलवान फीतले शायद उस दांव को कहते हैं, वो बताएं उसकी तरह सी बारीकी। और
देखिए मेरी वो फेवरेट टेक्निक है, फीतले दांव बोलते हैं उसको, मैं बचपन से उसके लिए ट्राई करता और हमारे रेसलिंग बोलते हैं कि आप एक दांव को 1000-2000 बार करते और आपकी कुश्ती में आपने एक बार लगा दिया तो समझिए कि आपका जो आपने मेहनत की वो सफल हुई, पर वो सबकी नजरें उस पर ओलंपिक 2012 लंदन ओलंपिक में जब डिपेयर कोरिया के साथ कुश्ती, क्योंकि मैंने उसको 6-0 से बार किया, टेक्निकल सुपरटी के आधार पर मैंने उसको हराया। और वो टेक्निक ये है कि हमें जब अगले कमर पकड़ते हैं और पैरों से वो करते हैं उसको, ये है कि अगर वो अच्छा अपने पकड़ में आ जाता है वो टेक्निक में कोई, तो उसमें हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं और हमारे जीत के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
वो जो उस कुश्ती को याद करिए, उसमें शायद आप पिछड़ रहे थे, फिर आपने फीतले लगाया,
2-2 मिनट के 3 राउंड होते थे, उसके बाद कुश्ती अभी चेंज हुई है, उसमें पहला राउंड उसने जीता था 2 मिनट का, उसके बाद 2 राउंड तो मैंने जीता था, वो 3रा राउंड था वो निर्णायक राउंड था, उसमें जाते ही मैंने उसको फीतले दाव अप्लाई किया था और मतलब 6-0 से मैंने उसको बाहर निकाल दिया था 1 मिनट के अंदर ही। बस ये है कि वो फेवरेट टेक्निक, वो मेरी यादगार टेक्निक बन गई वो, और लोगों के लिए भी बहुत यादगार रही।
लेकिन दुनिया के जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो जो आपको स्टडी कर रहे होंगे उनको मालूम होगा कि ये आपका फेवरेट दांव है, वो तैयार होंगे इस बारिश के लिए?
बिल्कुल तैयार है, क्योंकि अभी मैंने अभी कोशिश की वो लगाने की, अभी दोनों पहलवानों को पता था और उन्होंने उसके लिए अपनी बचाव किया और सभी पहलवान करते हैं, हम भी ये है कि हम उससे अलग कुछ काम कर रहे हैं कि अगर पहलवान को ये टेक्निक आता तो उस पर ये अप्लाई करें।
तो अब ओलंपिक आपका लक्ष्य और क्या सोच है, क्या दिख रहा है?
मेरे पिताजी का सपना था और मैंने पहली बार लिएंडर पेस को देखा था जब उसका ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल आया था, तब से सोचा कि मैं ओलंपिक में मेडल जीतना है और पिछले 2012 में मैंने मेडल जीता, वो भगवान ने मेरा सपना पूरा किया और सभी देशवासियों की दुआ साथ रही है और अब भी है। अब मैं चाहता हूँ कुछ उसको गोल्ड मेडल, 2012 से बस मैंने ये सोचा कि मैं देश के लिए गोल्ड जीतूं।
मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में बिगड़ते हालात के चलते आबादी का एक बड़ा हिस्सा दिमागी बीमारी का शिकार है। सरकारी से लेकर कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से हो जाता है कि 18 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ 5 सरकारी मनोवैज्ञानिक अस्पताल हैं। सुनिए सभा एहतजाज की खास रिपोर्ट।
पंजाब में भूरेवाला के करीब ये बाबा हाजी शेर का सूफी मज़ार है, जहां मुल्क भर से जहनी मरीज़ अपनी ज़िंदगी के कई मौसम जंजीरों में दरख्तों से बंधे बसर कर रहे हैं। یہاں پر زیادہ تر دیہی علاقوں سے آنے والے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں آ کر ان کے پیارے ایک دن صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ صفیہ بی بی اپنے اخلوتے بیٹے کے لیے دعا ہی ان کی آخری امید ہے۔ ان کا 20 سالہ بیٹا سہمی سہمی آنکھوں سے کبھی انہیں اور کبھی اپنے ٹخنے پر بندھی زنجیر کو دیکھ رہا ہے۔ ادھار مانگ کر وہ بیٹے کو گجرانوالہ سے یہاں تک لائی ہیں۔ تپتی دھوپ میں پسینے کے ساتھ ساتھ صفیہ بی بی کے آنسو بھی بہ رہے ہیں۔
سانو کسی نے دسیا پی او ادھر ملتان والا کوئی بابا آیا تے مارے بندے غریب ہیں مائی تے تو اتھے لے جا اتھے نو سنگل پا کے باندھ لین گے تے اللہ دی طرفوں سنگل کھول جاؤ گا۔ 2 سال ہو گئے مینوں پوتے تے مگر پھر دی نو میرے پیروں دے لو اڈ گیا میں بڑا پھری ہوں بیٹے مگر تیر ماں نے انو آیا دسیا گلیاں چ پیدا بچے روڑے مار دے تے ماں مار دے انو بچے نو پھر سارے کو جریا نہیں جاندا برداشت نہیں ہوندا بیٹا۔
مزار پر 2 دہائیوں سے کام کرنے والے نگران عطا محمد نے بتایا کہ گزشتہ چند سالوں سے یہاں آنے والے ذہنی مریضوں میں بہت اضافہ ہوا ہے۔
ہاں جی اسی کرنے ہیں انہوں نے جو سہولت سارے واسطے تھے اسی انہوں نے کرنے ہیں، لیکن جڑے اے خود مریض ہیں انہوں نے ہوں اسی کی سہولت دئیے، انہوں نے کوئی منجی نہیں دے سکتے، اس قابل نہیں ہے نا جی۔ یہ 9 راتیں بابے دی منت ہے، جڑا بندہ 9 راتاں تھلے سوندا ہے اور صفاں تے بہندا ہے لنگر کھاندا ان شفا ہوندی۔
ماہرین کے مطابق پاکستان میں ذہنی صحت کا مسئلہ جتنا بڑا ہے اس سے نمٹنے کے ادارے اور وسائل اتنے ہی محدود۔ لاہور میں نجی سائیکیاٹرک ادارے فاؤنٹن ہاؤس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عثمان رشید نے بتایا،
اس کو بہت زیادہ ٹیبو سمجھا جاتا ہے۔ ابھی بھی ہم جو اب لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی اٹس جیسے کہتے ہیں جی وہ مینٹل ہو گیا ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے وہ اس کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے ہماری سوسائٹی، پر انفارچونیٹلی اس کا علاج اتنا کامن نہیں ہے۔ بگ سٹیز میں ٹریٹمنٹ سینٹرز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، چھوٹے شہروں میں ابھی بھی جیسے وہ پیری فقیری کا ایک رواج ہوتا ہے پاکستان میں، ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن ابھی بھی ہمیں سائیکو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، لوگوں کو قائل کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ مرض جو ذہنی مرض ہے یہ بھی قابل علاج ہے۔
صوفی بزرگ حاجی شیر کے دربار میں کھڑی ہوں، دیواریں اس وقت قوالی سے گونج رہی ہیں، اس کے ساتھ کچھ لوگ تبلے کی تال پر جھوم رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، شکل سے کھوئے کھوئے لگتے ہیں، گلے میں زنجیریں ہیں اور پاؤں میں بیڑیاں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ذہنوں میں قید ہیں اور ان کے گھر والے انہیں یہاں معجزے کی امید میں چھوڑ گئے ہیں۔ پنجاب کے اس مزار پر بندھے ہوئے بھلائے گئے یہ لوگ شاید پاکستان میں کروڑوں ذہنی مریضوں کی کیفیت کی عکاسی کر رہے ہیں، جو اپنے دماغی اضطراب کی زنجیروں سے تب تک آزاد نہیں ہو پائیں گے جب تک معاشرتی اور ریاستی سطح پر ان کو قبولیت نہیں ملے گی۔ صبا اعتزاز، بی بی سی نیوز، بورے والا۔
اور اب یہ بتائیے واتسل، کاریکرم ختم ہونے کو اخبار کیا کر رہے ہیں؟
جی فیصل صاحب، آپ کو یاد ہے مودی صاحب کا وہ سوٹ جو انہوں نے پچھلے سال 26 جنوری کو پہنا تھا، جس میں ان کا نام لکھا ہوا تھا نریندر دامودر داس مودی؟
بالکل، بڑا چرچت ہوا،
4,31,00,000 روپے میں نیلام ہوا تھا اور اب وہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں پہنچ گیا ہے۔ حالانکہ اخباروں کی آج سب سے بڑی خبر یہ نہیں ہے، اس کو بھی سنگل کالم میں پہلے پنے پر جگہ ملی ہے۔ سب سے بڑی خبر ہے ارجیت پٹیل جو آ رہے ہیں اب رگھورام راجن کی جگہ لیں گے، گورنر بنیں گے 4 ستمبر کو، ان کو لے کر اخباروں نے پہلے پنے پر جگہ دی ہے، زیادہ تر اخباروں نے اس کو لیڈ خبر بنایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ارجیت پٹیل مہنگائی پر قابو کرنے کے ماہر مانے جاتے ہیں اور سرکار کو امید ہے وہ آئیں گے تو بدلاؤ آئے گا۔ دوسری بڑی خبر جو ہے وہ سارے اخباروں میں دیکھ پا رہا ہوں، وہ نظریں جمی ہوئی ہیں، جیسے آپ نے کچھ دیر پہلے نورس پریتم جی سے بھی بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ آج ریو میں یوگیشور دت میدان میں ہوں گے، دمخم دکھائیں گے، اس خبر کو سارے اخباروں نے دیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور خبر ہے جو دھیان کھینچتی ہے کہ ایک ہینڈ بال کھلاڑی نے خودکشی کر لی، تو اس اخبار کو بھی پہلے پنے پہ جگہ دی گئی ہے۔ امر اجالا اخبار لکھتا ہے سندھو ساکشی دیپا کو پیسہ اور پیار، ادھر غریبی سے ہاری ہینڈ بال کھلاڑی، غریبی میں وہ جوس رہی تھی۔ اسی سے ملتی ہوئی ایک خبر میں دینک بھاسکر میں دیکھ رہا ہوں، جہاں ایک دلت لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا، 12 سال کی بچی ہے، تو اس کو بھی پرمکھتا سے دینک بھاسکر نے چھاپا ہے۔
بہت بہت شکریہ اخباروں کی سمیکشا کے لیے، اور اب جاتے جاتے ایک بار وشو سماچار۔ پھر
بی بی سی سماچار۔ یمن کی راجدھانی سنا میں ہزاروں لوگوں نے سعودی گٹھ بندھن سینا کے حملوں کے ورودھ میں پردرشن کیا۔ پردرشنکاریوں نے ہوتی ودروہیوں کی اور سے گھوشت نئی گورننگ کاؤنسل کے پرتی سمرتھن بھی ظاہر کیا۔ तुर्की के सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक गाजियांतेप में हुए बम धमाके में 22 लोगों की मौत हो गई और 90 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने कहा है कि सरकारी सेना ने कुंदूज प्रांत के अहम जिले को तालिबान के कब्जे से छुड़ा लिया है। बीबीसी समाचार।
अजीत सारथी ने प्रोग्राम का तकनीकी पक्ष संभाला था। एक घंटे में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।